ओम शांति। ओम शांति। एक बार बरसात के दिनों में तीन दोस्त घूमने जाते हैं। बरसात बहुत जोरों से होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी थम जाती है तो आसमान साफ हो जाता है। फिर वो दोस्त पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। तो घूमते घूमते काफी दूर चले जाते हैं अपने गांव से, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए, देखने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं, उनका मन वहां रम जाता है। फिर अचानक शाम के टाइम बादल आते हैं, फिर धीरे धीरे बरसात शुरू होती है। देखते देखते बहुत जोर से बरसात शुरू हो जाती है। अब वो अपना बचाव के लिए ठिकाना ढूंढते हैं, तो वहां उनको एक गुफा दिखाई देती है। वो गुफा के अंदर बैठ जाते हैं बारिश से बचाव के लिए, कि जब बारिश कम होगी तो हम यहां से निकलेंगे। तो बारिश और तेज होती जाती है, तूफान चलता जोर से, और धीरे धीरे चट्टाने खिसकने लगती है। और देखते देखते एक बहुत बड़ी चट्टान आती है और उस गुफा के आगे रुक जाती है, अर्थात उनका जो गुफा का दरवाजा वो बंद हो जाता है। अब वो चट्टान इतनी भारी थी कि उसको हटाना नामुमकिन था। तो उस चट्टान को कैसे हटाएं? अगर हटाएंगे तो मर जाएंगे वो। तो लास्ट में उनको एक ही आशा की किरण दिखती है कि भगवान को याद करो, कि हमारे जीवन में जो पुण्य हैं उन पुण्यों के बल पर हो सकता भगवान हमारे पर कृपा करें। तो तीनों दोस्त बोलते हैं, टर्न बाय टर्न प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो पहला दोस्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने जिंदगी में अगर पुण्य कर्म किए हैं तो ये चट्टान पीछे हट जाए। तो 2-4% चट्टान पीछे हट जाती है, अब उससे निकलना तो नामुमकिन है, बहुत रास्ता चाहिए निकलने के लिए। फिर दूसरे दोस्त की प्रार्थना करने की बारी आती है। दूसरा दोस्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, जो मैंने जीवन में पुण्य कर्म किया है तो ये चट्टान पीछे हट जाए। तो 2-4% और पीछे हट जाती है, फिर भी निकलना नामुमकिन है। फिर अब ये की दोस्त बचा, तीसरा
लास्ट बॉल।
तो वो कहता है, हे प्रभु, मैंने जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं, अगर पुण्य ठीक किए हैं तो ये चट्टान पीछे हट जाए। तो चट्टान सारी पीछे हट जाती है। तो वो क्या फर्क होगा तीनों के पुण्य में? मन वचन कर्म की पवित्रता भावाने मूल्य में कहा। तो फिर पहले पूछा जाता है, फिर इन तीनों से आपस में तीनों दोस्त पूछते हैं एक दूसरे से। तो पहले वाला बोलता है, मैंने दान पुण्य किया है जीवन में, किसी को दुख नहीं दिया है। फिर दूसरा दोस्त आया, उसको पूछा जाता है, आपने क्या किया है? बोला, मैंने एक बार हमारे पिताजी ने किसी से पैसा लिया था उधार, तो पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था और जिसके पैसे उधार थे मैंने वो वापस दिए थे, तो ये पुण्य है। फिर तीसरे की बारी आती है। तो तीसरा दोस्त कहता है, मुझे तो जीवन में मेरा एक ही पुण्य नजर आता है, वो ये कि बारिश के दिनों में ही हमारे घर के बाजू में ही एक मकान था और उसमें फैमिली थी, उसमें बहनें भी रहती थी, भाई भी रहते थे, माँ बाप भी थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका मकान गिर जाता है और फिर मैंने उनको पनाह दी थी उन सबको। तो यंग बहनें थी, यंग युवतियां थी, उनको भी पनाह दी थी। लेकिन लंबे समय तक उनको अपने घर में रखने के बाद फिर लोगों की हमारे ऊपर बहुत सारी बातें उठने लगीं कि नौजवान आदमी है, बहनें रखी हैं इसने। लेकिन मेरे मन में एक भी संकल्प उनके प्रति ऐसा नेगेटिव अपवित्रता का नहीं आया, निष्कलंक पवित्रता रही। तो मेरा यही पुण्य था और उस पुण्य के कारण आज आपके सामने, जबकि वो दो दोस्त भी उसको ऐसे ही कहते थे, तो वो पवित्रता का पुण्य जो है उसके कारण ही सारी चट्टान पीछे हट गई। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में भी जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं या हमारा जो अंतिम गोल है, अचीवमेंट है, वो यही है, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता के लिए ही हम इतने लंबे समय से अभ्यास करते हैं। बाबा ने कहा अंत में तुम मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की बीच में बाधाएं आती हैं। और सब बाधाओं को दूर करने का एक ही मंत्र है आज की मुरली में, जो बाबा ने कहा पवित्रता। तो पवित्रता में बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, बल है। मुरली का शीर्षक ही है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। अगर हमारे जीवन में खुशी परसेंटेज में है, कम है, या कभी कभी उदासी आती है, कभी मन उलझन में रहता है, मन भटकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता की कमी है। तो बाबा ने आज दो प्रकार की विशेष आत्माओं को देखा। 22 मार्च 1986 की अव्यक्तवाणी है, होलीनेस और हैप्पीनेस, दो प्रकार की आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। और जो सभा, बाबा कहते सारे कल्प में इतनी बड़ी सभा, इतना बड़ा संगठन हो नहीं सकता। ये संगठन की विशेषता है कि ये होलीनेस भी हैं और हैप्पीनेस आत्मा भी हैं। संसार में भी आत्माओं को टाइटल मिलता है, लेकिन वो महानता, वो पवित्रता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती उनमें। तो ऐसा क्यों, जबकि संसार में भी तो पवित्र आत्माएं हैं, बहुत हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में क्या अंतर है? जबकि सन्यासी भी हैं, अनेक साध्वी भी हैं, साध्वियां भी हैं, वो भी पवित्र रहते हैं, उनकी तपस्या भी घोर होती है, कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। हाँ जी, हम लोगों से भी स्ट्रांग होती है। उसका क्या कारण है, क्यों स्ट्रांग होती है?
बाबा की श्रीमत पर।
हाँ, मुख्य बात है हमने भगवान की आज्ञा अनुसार पवित्रता को हमें मिला है, और वो है हठ के बल पर। जबकि बाबा उनकी भी महिमा करते हैं, अगर ये सन्यासी पवित्र नहीं रहते तो ये संसार जलकर खाक हो जाता है, भस्म हो जाता है, विकारों की आग में सारा संसार झुलस रहा है। तो भगवान की उनकी महिमा करता है, तो पवित्रता की कितनी बड़ी महत्ता है, महत्व है उसका। भले उन आत्मा को होलीनेस हैप्पीनेस का टाइटल मिलता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण में इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वो अपनी मन मत मिक्स है उसमें, और हम श्रीमत के अनुरूप अपने इस जीवन में पवित्रता को अपनाते हैं। और पवित्रता हमको सहज लगी, क्यों? क्योंकि हमको बाबा ने बता दिया ये तो तुम्हारा स्वधर्म है, अर्थात ये तुम्हारा अनादि संस्कार है, अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र। जो पिछले संडे में भी एक अनादि स्वरूप की बात बताई थी, कौन सी है अनादि स्वरूप की, हमारी कौन सी स्थिति थी गत संडे में, जो पिछला संडे बीत गया, उसमें ने बाबा ने कहा ना स्वीट साइलेंस की, तुम्हारी आदि अनादि अवस्था है ही स्वीट साइलेंस की। दो परिभाषाएं बताई थी, एक तो परम धाम की, दूसरा इस संसार में रहते हुए देखते हुए नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, इसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस की स्थिति। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र, इसलिए तुमको सहज हो गया। इसलिए यहां हर एक बच्चे ने दृढ़ संकल्प किया है कि ना केवल कर्म से बल्कि मन वचन कर्म, मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र हैं, पवित्र रहेंगे। और इस दृढ़ संकल्प की बदौलत हमको क्या हो गया, सहज हो गया और हमारा अविनाशी हो गया। और उन आत्माओं के लिए अविनाशी भी हो नहीं सकता, सहज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें मन मत मिक्स है। हाँ, और उनको आदि जो इस सृष्टि की आरंभ काल है, आदि है, उनका भी उनको पता नहीं है। और वो तो सारा परम धाम के मोक्ष की अवस्था चाहते हैं, तो ब्रह्म तत्व में लीन होना चाहते हैं। तो बाबा तो हम सबको नॉलेज की शक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं नॉलेज मिली है, तो नॉलेज के बल पर, नॉलेज की शक्ति के आधार पर हमारी पवित्रता सहज होगी, अविनाशी होगी। और उनको वो असंभव लगता है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। बाबा कहते हैं संघ दोष का रूप जो अब अपवित्रता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पवित्रता है। तो पवित्रता, कई सारे मूल्य पवित्रता के ऊपर चली हैं, जैसे पवित्र संकल्प तुम ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि तुम ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है, पवित्र बोल तुम्हारे मुख के क्या है, हाँ जी, मुख के रतन है। तो ये पवित्रता हमारा जो है मूल अमूल्य खजाना है, जो गीत में भी था है। पवित्रता, हाँ, पवित्र कर्म आप ब्राह्मणों का विशेष धंधा है। तो ये पवित्रता हमारे एक अमूल्य खजाना है, क्योंकि सारा कल्प हमारा जो जीवन है वो पवित्रता के बल पर चलता है। अब भी हम भगवान के बने हैं, तो कहीं ना कहीं हम आत्माओं में कुछ ना कुछ पवित्रता थी, तभी वो पवित्रता ने पवित्रता को आकर्षित किया है। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं पवित्र आत्माएं ही भगवान को प्रिय लगती हैं, पवित्रता ही पवित्रता को खींचती है। तो नॉलेज की शक्ति से बाबा ने हमें स्वरूप, स्व का रूप, स्व का धर्म, स्व का देश, स्व का पिता, स्व का कर्म, ये हमको अनुभव कराया। उसके आधार पर हम सब आत्माएं पवित्रता से, पवित्रता को अपनाना हमको सहज हो गया। संसार में पवित्रता को अननेचुरल समझते हैं, असंभव समझते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से हमको जो अननेचुरल वो नेचुरल हो गया है ना। पहले भी बताया था, इस ज्ञान मार्ग में या कोई संसार में, जब ज्ञान मार्ग में कोई नए नए आते हैं या संसार वालों को कोई प्रश्न होता है कि अपवित्रता से नेचुरल है, ये कहते हैं। लेकिन नेचुरल वो चीज होती है जो निरंतर होती है, अपवित्रता नेचुरल नहीं है। जैसे शांति में रहना, ये हमारा नेचुरल है। एक व्यक्ति है वो 24 घंटे अशांत नहीं रह सकता है, या दूसरे शब्द में यूं कहें कि 24 घंटे कोई भी काम विकार में नहीं जा सकता है, लेकिन 24 घंटे शांति में रहना संभव है। तो ये अननेचुरल जो संसार कहा जाता, कहते हैं संसार में उसको,
मेहमान की तरह ही आता है।
हाँ, मेहमान की तरह है ये, तो रावण का मेहमान।
बचपन से लेकर युवावस्था के बीच तक भी प्योरिटी रहती
है। हाँ, बचपन से लेकर युवावस्था देखो तो प्योरिटी के बल पर हम कितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं। जो बाबा कई दफा कहते हैं पढ़ाई जो है वो प्योरिटी ब्रह्मचर्य में की जाती है। तो पवित्रता बाबा कहते हैं माता है, और सुख शांति उसके बच्चे हैं। और जहां पवित्रता है, सुख शांति है, वहां तो खुशी है ही है, हैप्पीनेस है ही है। जो आत्माएं पवित्र हैं उनके पीछे सुख शांति परछाई की तरह आती है। आज हम देवताओं के आगे देखते हैं वो जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन वो पुकारते थोड़ी नहीं किसी को। उनका हर्षित मुख चेहरा, उनकी खुशी आकर्षित करती है। पवित्रता के बल पर ही भक्तों की लंबी लंबी लाइन अनुभूति करने के लिए लगी रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा फाउंडेशन है, भले वो आत्माएं भी पवित्रता के फाउंडेशन को जानती हैं लेकिन रह नहीं पाती हैं। अल्पकाल का सुख उनको भी मिलता है लेकिन उस सुख के साथ साथ दुख भी आ रहा है, चिंता है, भय है। और चिंता है वहां चित्त में चैन नहीं है, चैन हो नहीं सकता, अशांति है, सुख है, सुख है लेकिन अल्पकाल के सुख के साथ साथ अशांति है और भय है, डर है,
मारामारी
है, पश्चाताप है। कहीं ना कहीं सुख जो भोगते हैं तो उसका परिणाम उनको पश्चाताप के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन पवित्रता तो ये लंबे समय का जो है ये हमारा हमारे सांसों में समा गई है, नेचुरल हो गया है। इसलिए हमको पवित्रता के साथ साथ पवित्रता के आधार पर सुख शांति और खुशी का अनुभव स्वतः होता रहता है, उसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सहज है। तो हमारे जीवन में पवित्रता की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। लेकिन कई दफा पवित्रता को अपनाने के लिए संघर्ष भी करने पड़ते हैं क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हम सब आत्माओं के अंदर है। कुछ दिन पहले एक बहन का फोन आया था तो उन्होंने बोला था कि मैं पिछले जन्म में जाना चाहती हूं और उनके पास कोई है साधन ऐसे, तो उन्होंने पूछा था कि जाना चाहिए, तो हमने बोला गलती से भी नहीं जाना, हमको एक जन्म के हिसाब किताब का भुगतने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, अगर पिछले जन्मों का हिसाब किताब चल गया पता तो क्या मुसीबत हो जाएगी, कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, तो गलती से भी भूल से नहीं जाना। इसलिए कुछ साल पहले एक टीवी में सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में लेके जाते थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था क्योंकि पिछले जन्मों में जाने के बहुत सारे भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि ये तो पिछले जन्म में मेरे साथ बदसलूकी की है, मेरा पैसा इतना उधार लेके मार के चला गया, तो फिर क्या हाल होगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे। ये तो कुदरत का बहुत अच्छा नियम है जो हमको पिछले जन्मों का भूल जाता है। तो पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा कहते जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः है। जैसे बच्चे मां के पीछे स्वतः आते हैं ऐसे पवित्रता के पीछे सुख शांति स्वतः आती है। और पवित्रता के कारण तुम क्या बन गए, भी बेगमपुर की बादशाह बन गई, क्योंकि सुख है। बादशाह कौन होते हैं, जो सदा सुखी होते हैं। तो तुम्हारा संसार ही सदा के लिए सुखी संसार बन गया, बेगमपुर के बादशाह बन गए, पवित्रता की लाइट का ताज मिल गया, बाप के दिल तक नशीन बन गए, है ना। और क्या बन गए, बादशाह भी न्यारे बन गए, बादशाही भी न्यारी और बादशाह भी न्यारे बन गए। संसार में तो बाबा कहते हैं सुख शांति के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, तुम्हारी भागदौड़ समाप्त हो गई। भागे दौड़े तो अपन भी लोग भी बहुत, लेकिन हमारी पूरी होगी भागदौड़। भागदौड़ था वो प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी उनको मिलती नहीं है, इसलिए बाप को तरस आता है उनके ऊपर। समस्या तन से भी भागते हैं, मन से भी भागते हैं, लेकिन हमारी भागदौड़ भी है। हमारी भागदौड़ है ऊपर की तरफ और उनकी भागदौड़ इस संसार में है। तो बाबा कहते हैं तुमको सब समस्याओं का समाधान मिल गया, तुम समाधान स्वरूप हो गए, और वो भागदौड़ कर रहे हैं, समस्याओं के वश में हैं, समस्याओं के अधीन हैं। और तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, जैसे हाथी के पांव के नीचे चींटी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर कान में घुस जाए तो होगा कुछ। तो ऐसे ही हमारे बुद्धि में चींटी नहीं घुसनी चाहिए, वो कानों में चींटी नहीं घुसनी चाहिए। अर्थात समस्याएं हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन बन गई, खेल बन गई। जैसे बाबा ने एक एग्जांपल दिया, अगर बच्चों को कहा जाए कि हिसाब किताब का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल की रीति से कहें तो खेल खेल से वो सहज कर लेते हैं। इसलिए आजकल सारा हाईटेक जमाना है तो सारा कंप्यूटर से और कैलकुलेटर से सारा कैलकुलेट हो जाता है, नहीं तो पहले टाइम में क्या होता था, उंगलियों पर करते थे वो गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी है, उंगली से करते हैं, लेकिन अभी उंगली वहां लगाते हैं तो वो सारा अगर गलत है तो वो उसको ही ठीक मानेंगे, कैलकुलेटर को ठीक मानेंगे। लेकिन जो पहले उसमें करते थे उसका अपना रास्ता, उसमें बुद्धि चलती थी, अभी सारे बुद्धि जो कंप्यूटर में लॉक हो गई है। जो कंप्यूटर बोलेगा वही सत्वचन महाराज है, उसको जो गूगल सर्च करके देगा वो उसको मान्यता दी जाती है। अपना विवेक कंप्यूटर में चला गया है, हाँ, तो उसी में आप सर्च करो, उसमें आप डाल देंगे तो सारा सर्च करके बता देगा, है ना। आजकल की मुरलियां हैं, मुरलियां अगर किसी को सर्च करनी होती हैं तो रहनी तो बुद्धि में चाहिए, लेकिन कंप्यूटर सर्च करके बता देता है कि इस मुरली में ये महावाक्य है मौजूद, बताओ। सारी आध्यात्मिकता भी कंप्यूटर में चली गई है, वहां से ढूंढना पड़ता है, लेकिन सारी तो हमारे बुद्धि में रहनी चाहिए। ऑनलाइन आरती भी है, भक्ति भी ऑनलाइन हो गई है, सही बात है, आजकल भक्ति भी सारी ऑनलाइन हो गई है। तो फिर ये है कि सारा पवित्रता का कितना महत्व है। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों की बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं गिनती की हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों में क्या विशेषताएं हैं? त्यागी हैं, तपस्वी हैं, महादानी हैं, तो उनमें सेवा की भावना है, और सेवा की भावना त्याग के बल पर सेवा की भावना है, और इससे उनका भाग्य बन रहे हैं, ना केवल अपना भाग्य बना रहे हैं बल्कि अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसका फल उनको भी मिल रहा है और उनको भी मिल रहा है। और फल क्या है? खुशी है, जीवन में उनकी भी वृद्धि हो रही है, विधि से विधि पूर्वक वृद्धि सेंटर बहुत वृद्धि कर रहे हैं। तो त्याग तपस्या है, त्याग तपस्या के बल पर ही सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा उनकी स्थिति जो निर्विघ्न, क्योंकि जहां त्याग तपस्या है वहां स्थिति भी निर्विघ्न बनती जाती है, और निर्विघ्न स्थिति एग्जाम्पल दिया, अगर लंबे समय तक निर्विघ्न स्थिति है तो वो आत्मा शक्तिशाली रहेंगी। अगर बार बार स्थिति विघ्न आ रहे हैं, उनको हम हटा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? टाइम जा रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। बाबा ने कहा यही एनर्जी अगर आप सेवा में लगाओ तो एक का पद मुड़न जमा हो जाएगा। बार बार जो चीज टूटती है उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और वो पहले वाली ताकत नहीं रहती है। इसी तरह अगर हमारा प्रसाद खंडित होता है तो बार बार उसको पटरी पर लाना मुश्किल हो जाता है। अगर हमने एक जो दिनचर्या बना ली है, परमानेंट जो हो गई है, उस दिनचर्या से अगर हम पटरी से उतर जाते हैं, फिर लंबे समय पर के बाद पटरी पर लाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बड़ा प्रसाद करना पड़ता है। इसलिए विघ्न तो आएंगे, ऐसा नहीं है विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन विघ्न को हटाने के लिए तपस्या का बल चाहिए। निर्विघ्न आत्माएं, लंबे समय के निर्विघ्न आत्माएं स्वयं भी शक्तिशाली हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। फिर यहां क्या एग्जाम्पल बाबा ने और दिया, किसका? डॉक्टर निर्मला का। तो क्या एग्जाम्पल दिया? स्ट्रिक्ट है, और क्या बोला? तो बाबा ने कहा ये बच्ची शुरू से निर्विघ्न रही है, ऐसा नहीं है कि वो विघ्न नहीं आए होंगे, लेकिन विघ्नों को मन, विघ्नों के अधीन नहीं हुआ उनका मन, विघ्नों को तो देखा लेकिन विघ्नों को पार करने की ताकत रखी बीच में, विघ्नों को प्रभाव, विघ्नों से प्रभावित नहीं हुए, विघ्न मन पर हावी नहीं हुए, विघ्नों के वश नहीं हुए वो, तो इसलिए उनकी स्थिति सदा निर्विघ्न रही। और यही निर्विघ्न स्थिति उनको फिर जो आने वाले ऑस्ट्रेलिया वाले हैं तो उनको भी ऐसे निर्विघ्न स्थिति का पाठ पढ़ा दिया, उस स्थिति के बल ही सेवा में वृद्धि हुई धीरे धीरे। फिर एक एग्जाम्पल और दिया बाबा ने, जैसे कड़वी दवाई होती है, बोला डॉक्टर निर्मला थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो बाबा ने कहा स्ट्रिक्ट होना भी अच्छा है, और वास्तव में सही है, जो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं तो वहीं परिणाम अच्छे आते हैं, अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं हो तो परिणाम भी वैसा ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पुराने पुराने भाई अभी भी कितने सालों बाद कितने मजबूत हैं, आते हैं, और देखा गया उनके व्यवहार में कितना दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता है, कितनी मिठास है, कितनी मिलनसारिता है जब भी यहाँ मधुबन में आते हैं, है ना, और मधुबन के प्रति उनका कितना लगाव है, कितना प्यार है। और बाबा ने कहा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं, है ना। जैसे पिछले साल तो नहीं कहेंगे, 5-6 साल पहले जब मधुबन में आए थे माइकल भाई और जो, तो गेट पर आए थे, साथ में बहन आती थी उनके जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, हाँ जी, मार्गरेट बहन जी। तो जब मधुबन में आए थे तो गेट पर आपने देखा होगा प्लेट लगी है, एक पत्थर की प्लेट, मधुबन पुरानी प्लेट लगी है, वो संगमरमर के लिखा मधुबन है ना, तो बीच में उसके ऊपर एक लगा दी थी, गोल्ड प्लेटेड प्लेट लगा दी थी एक मधुबन लिख के, तो उनको आती बहुत खराब लगा था कि जो ओरिजिनल है वही रहना चाहिए ओरिजिनल। आते उन्होंने गेट में इंटरवाल नहीं किया था, स्नान पानी करके जब मधुबन के गेट पर आए तो पहले उन्होंने ही किया, ये क्या किया, उतरवा लिया उधर से। तो मधुबन की जो पुरानी चीजें हैं उनके प्रति उनको कितना लगाव, कितना आकर्षण है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इसलिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था, मधुबन को याद करना अर्थात बाप को याद करना। मधुबन बाप की याद सहज दिलाता है, क्योंकि जो पुरानी चीजों में वाइब्रेशन है, जो उनके वायुमंडल है, वो वाइब्रेशन आकर्षित करते हैं। हम नई चीजों का निर्माण करते हैं, भले वाइब्रेशन वहां वो हैं, लेकिन जो नई चीजों का निर्माण करने के बाद हमारी बुद्धि कुछ परसेंटेज में नई चीजों के अटक जाती है उनमें जाकर, जबकि पुरानी चीजों में जो वाइब्रेशन है, त्याग तपस्या का जो बल है, वो कहीं ना कहीं फिर लोप हो जाता है। इसलिए पुरानी चीजों में आप देखेंगे प्राचीन काल से जो धरोहरों को कितना सरकार भी उनको देखरेख करती है उसकी, उनको इतना नया रूप नहीं देती है लेकिन उनका संरक्षण करती है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं इनके दीदी के वाइब्रेशन की भी उनको काम करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो न्यारी भी है, प्यारी भी है, और क्या बताया है, नियरेस्ट भी है और डियरेस्ट भी है। इसलिए बाप को सबके ऊपर विशेष हुज्जत है ना, हुज्जत अर्थात गर्व है और
नाज।
हाँ, हुज्जत को दूसरे शब्दों में नाज भी कहेंगे, गर्व भी कहेंगे। तो ये मुरली थी, तो इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक तो मुख्य रूप से बहुत सारे इसमें टाइटल भी हैं, होलीनेस आत्मय है, हैप्पीनेस है, बिगिन विनाशक हैं, पवित्र आत्मय हैं, बेहद के बाद न्यारे प्यारे बादशाह हैं, और सुख शांति संपन्न आत्मय हैं, समस्या समाधान रूप हैं, और फिर बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मय हैं, तो उनके आगे समस्याएं खेल जैसे लगती हैं, और बाप को सामने रखो तो समस्या आएगी नहीं। और श्रेष्ठ आत्मय कौन है, जो त्याग और तपस्या, जिनमें त्याग और तपस्या समाई हुई है, वही श्रेष्ठ आत्मय है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर बाबा ने ज्ञान में निकले तुरंत सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि जैसे दीदी ज्ञान में निकले तुरंत सेवा में लग गए, तो उनके वाइब्रेशन ही उनको प्रेरित करते हैं आगे आने के लिए। फिर इस मुरली में 7 प्रश्न हैं, लेकिन मुख्य रूप से पवित्रता के ऊपर हमको विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हम ब्राह्मणों का क्या फर्ज है, क्या जवाबदारी है। तो पवित्रता हमारी दिन प्रतिदिन, क्योंकि बहुत गुह्य सब्जेक्ट है, सूक्ष्म सब्जेक्ट है, और इसका हमको स्वयं के स्तर पर ही बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो सुशांत जैसी हालत नहीं हो जाए। जो एक बार कहानी भी पहले सुनाई थी कि एक साधक था जंगल में, युवा सन्यासी, बहुत साधना करता था और लंबे समय तक जंगल में एकांत में बैठ के साधना करता था। लोग उसको खाने पीने के लिए दे जाते थे, जाता नहीं था कहीं भी। वो उसके चेहरे पर खूब तेज था और एकदम भगवान के साथ उसका कनेक्शन जुटा रहता था जैसे। तो लंबे समय तक उसकी साधना चलती रही, सबको उसका तेज आकर्षित करता था। तो एक दिन साध्वी युवती होती है, वो भी बहुत भगवान को याद करती है, साध्वी होती है, वो भी भक्तन होती है अच्छी, तो वो भी जाती है तो उसको उसका तेज आकर्षित करता है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना इसकी सेवा करूं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो ऐसे तपस्वी की सेवा करने में। तो उसके मन में उस सन्यासी के प्रति बहुत ऊंच भावनाएं रहती हैं, कोई नेगेटिव भावना नहीं रहती है। तो सेवा करती है, फल फ्रूट रखे जाती है, पानी वानी रखे जाती है, लंबे समय सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उस युवती को यह भी रहता था कि कहीं इसकी आंख मेरी वजह से खुल ना जाए, इसकी साधना भंग नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके पुण्य का फल मुझे भी थोड़ा मिले। लेकिन उसकी साधना को भंग करने के उद्देश्य से उसने सेवा नहीं की। तो एक दिन अचानक फल फ्रूट रखते रखते अचानक उसकी तपस्वी की आंख खुलती है। तो आंख खुलने के बाद उसको दिखती है, वो तुरंत बंद कर लेता आंख को। फिर तो फिर लंबे समय कुछ कारण चलती रहती है। तो उसकी साधना को देखकर भगवान की बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि भगवान ऊपर से अवतरित होकर सीधा उसके आगे फिर पूछते हैं क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए? बोला नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? तो उसने बहुत सारे प्रलोभन रखे, स्वर्ग चाहिए? नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें अपना सिंहासन देता हूं। बोला वो भी नहीं चाहिए। तो बोला क्या चाहिए? बोला जो युवतियां आई थी वो कहां है? तो मन की सुख क्षमता कहां जुटी बताओ। हालांकि वो युवती वहां से जा चुकी है लेकिन उसके मन में बैठ गई। इसलिए साधना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी की गई। इसलिए साधना ये नहीं हम कह सकते हम लंबे समय तक चल रहे हैं ज्ञान में, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है, एक सेकंड धोखा दे सकता है। हाँ जी, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत मजबूत चाहिए। और इसका ये कि ये है कि अपने देह से डिटैच, और मुख्य पुरुषार्थ हमारा ये, जब तक हमने स्वयं को समझा नहीं है जो हम हैं, और दूसरे जो बॉडी है या देह की जो सारा जाल है, देह का जो परिवार है, जो संस्कारों की पुराने उन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, तो बुद्धि हमारी उस तरफ खींचती है। इसलिए सबसे बेस्ट जो अभ्यास है वो यही है, और इसी अभ्यास का बाबा ने पहले प्रश्न में जिक्र किया। और इसका पहला प्रश्न है मुरली का कि शक्ति सेना का नाम वाला कब होगा। इसमें टोटल 7 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर एक जैसा है, और उन प्रश्नों में बाबा ने एक स्थिति में रहने के लिए ही बहुत सारे महावाक्य उचारे हैं, और दूसरे 2 प्रश्न अलग से हैं। तो पहला प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम वाला कब होगा? जब बाप का नाम वाला होगा। बाबा ने कहा जब सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, एक संकल्प में, एक ही शुद्ध संकल्प में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे, तो शक्ति सेना का नाम वाला होगा। और दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये है, हाँ ये हमारे अंदर में है सारी चीजें। और दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक जब युद्ध में जाते हैं तो वो किस बात का ध्यान रखते हैं, उनकी विजय कब होगी, और तुम आत्माओं का विजय का नगाड़ा कब बजेगा? बाबा ने कहा जब उनको एक ही ऑर्डर मिलता है, एक ही ऑर्डर के आधार पर वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं, और एक ही ऑर्डर से वो चारों तरफ से घेराव डालते हैं। ऐसे ही तुम आत्माएं जब एक ही ऑर्डर मिले, एक स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सभी एक सेकंड में एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो तुम आत्माओं का विजय का नगाड़ा बजेगा। और तीसरा प्रश्न है, ये कलयुगी पर्वत कब उठेगा? ये संसार का जो बाबा ने कहा, कौन सा पर्वत है कलयुगी पर्वत? है नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं, किस बात पर? किस बात पर? हाँ, सर्व के संकल्प, और जब सभी के संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, एक ही संकल्प में, जो बाबा हमको एक ही संकल्प देगा कि शरीर अवस्था में स्थित हो जाओ, तो जब सभी आत्माओं के संकल्प एक ही संकल्प में समा जाएंगे एक सेकंड में, तो ये संसार का कलयुगी पर्वत उठेगा, और एक सेकंड में। ये नहीं बाबा कहते एक सेकंड में ऊपर चले गए दूसरे में नीचे आ जाए, वो एक सेकंड सदा काल का होगा, फिर तो ये कलयुगी पर्वत उठेगा। वैसे भी बाबा ने के मुरली में भी कहा कि अंत में सभी का एक ही संकल्प होगा, परिवर्तन, सबके मन में ये होगा परिवर्तन, ना केवल हमारे बुद्धि में बल्कि संसार की सभी ब्राह्मण आत्माओं की उसमें भी होगा। और तीसरा चौथा प्रश्न है, ब्राह्मणों की जवाबदारी क्या है, तुम बच्चों की जवाबदारी क्या है? सब आत्माओं को एक स्थिति में सहज स्थित करना, सब आत्माओं को। ये नहीं कहा बाबा ने कहा कि केवल मैं अच्छा हूं तो सब ठीक है, नहीं, सबको। उसमें एग्जाम्पल भी दिया, जैसे अज्ञानी आत्माओं को के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं कि आत्माएं भी क्या हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसे बाबा ने कहा इस दैवी संगठन के प्रति भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो कि एक स्थिति में स्थित कैसे हो जाए, उसके लिए बाबा ने कहा प्लान बनाओ, युक्तियां रचो, तो तब क्या होगा, ये ब्राह्मणों का फर्ज जवाबदारी है वो पूर्ण होगी। और पांचवा प्रश्न है, परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? क्या परमात्म ज्ञान की विशेषता? संगठन की शक्ति ही परमात्म ज्ञान की विशेषता है, और इसकी निशानी है भविष्य में देवता स्वरूप में, जो है भविष्य देवता रूप में क्या होगा उसका दिखाए, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वो एकता की निशानी है, वो तो एकता की निशानी है। और कौन से संस्कार जो हैं बाबा ने कहा जो होने चाहिए तुम बच्चों के, जो जिससे संपूर्णता समीप पाएगी? बाबा ने कहा जो देह के मूल संस्कार हैं, देह अभिमान के, उनको छोड़ जो बाप के संस्कार है उनको ग्रहण करना, और लास्ट प्रश्न है, बाप की प्रत्यक्षता कब होगी, किस आधार पर होगी, इसका भी प्रश्न उत्तर वैसे ही है। इसमें बाबा ने एक एग्जांपल दिया भी है, जैसे संसार, हाँ जैसे संसार में कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, ऐसे ही हर एक बच्चे में जब बाप के संस्कार दिखाई देंगे तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये 7 प्रश्न हैं। तो मुख्य रूप से पवित्रता, तो पवित्रता तन मन धन, चाहे वो हमारी स्थूल पवित्रता भी बहुत है, स्थूल मीनिंग जहां हम रहते हैं वहां पवित्रता अर्थात स्वच्छता, स्वच्छता जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो वहां की वाइब्रेशन भी, अगर हमने ऐसी वैसी चीजें रख छोड़ी हैं, जैसे संसार में क्या होता है कमरों में ऐसे वैसे चित्र लगाओ तो विचार भी वैसे कैसे चलते हैं, वैसे चलते हैं। ऐसे अगर हमारे आसपास ही गंदगी पड़ी है ऐसा ही, या चलते चलते हम देखा कई बार कई लोग कहीं थूक देते हैं, वो सब अपवित्रता में गिना जाता है। कहीं भी पॉलीथिन फेंक देंगे, किचड़ा फेंक देंगे, वो सब अपवित्रता है, इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। तो स्वच्छता भी एक पवित्रता है, जितनी हमारे आसपास स्वच्छता होगी उतना हमारे विचारों की स्वच्छता स्वतः बढ़ती जाएगी, नहीं तो मन में अंदर कीट पतंगे घूमते रहेंगे, कीड़े मकोड़े घूमते रहेंगे। तो ये मुरली है 22 मार्च 1986 की। तो इसमें मुख्य रूप से हम एक मुरली में बाबा ने भी कहा था 81 में कि तुम्हारा ओरिजिनल, तुम तो ओरिजिनल हो ही परम पवित्र आत्मा है, तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है ही परम पवित्र आत्मा है। ये 22 मार्च 81 की शायद मुरली है, 22 या 25 मार्च की होगी। तो पवित्रता के संबंधित हमको पुरुषार्थ करना है तो पवित्रता से संबंधित मुरलियों को बार बार पढ़ना है। किताब भी है पवित्रता की बहुत अच्छी है, उसको भी हम पढ़ें अगर बार बार, और सारे दिन में इसका अभ्यास करें। बहुत सारे टाइटल हैं बाबा ने जो आज के मुरली में, तुम होलीनेस हैप्पीनेस आत्माएं हो, और वो संसार में उसका एग्जाम्पल दिया है, भले उनको टाइटल मिलता है लेकिन वो महानता वो पवित्रता उनमें नहीं है, और तुम आत्माओं ने जो फाउंडेशन पवित्रता है इसको नॉलेज की शक्ति से सहज समझ लिया, इसलिए सो स्वरूप में स्थित हो जाते हो, सो देश सो पिता सो कर्म, ये तुमको सहज हो गया अपनाना, अविनाशी हो गया। दुनिया वाले जिसको असंभव समझते हैं,
उनके पास जो पवित्रता होती है लेकिन सभ्यता नहीं,
हाँ सभ्यता नहीं होती उसमें, तो उन्होंने अननेचुरल समझ लिया, असंभव समझ लिया, लेकिन तुम आत्माओं के लिए संभव हो गया, सहज हो गया, क्योंकि नॉलेज की शक्ति है और तुम्हारा ये अनादि आदि स्वरूप है, और इसके कारण सुख शांति के पीछे जाना नहीं पड़ता है, सुख शांति खुशी स्वतः आते हैं, पवित्र आत्माएं हर्षित रहती हैं, जहां पवित्रता है वहां अनेक समस्याओं का समाधान। एक जगह और बाबा ने कहा, जहां पवित्रता है वहां स्वप्न में भी दुख अशांति आ नहीं सकते, वो आत्माएं उदास नहीं होगी। तो खुशी का राज क्या है, पवित्रता, चिल्ला उठते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे वास्तविक स्वरूप है, संग दोष का स्वरूप अपवित्रता है और वास्तविक स्वरूप पवित्रता है, तो तुमने सहज सहर्ष स्वीकार लिया इसलिए तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत है। संसार में फाउंडेशन उनका कच्चा है इसलिए बार बार वो दुख अशांति भय में जी रहे हैं वो, और तुम आत्माओं के लिए सहज हो गया है। तो फाउंडेशन भले उनको सुख मिलता है लेकिन उसके साथ साथ दुख शांति समाया हुआ है, समस्या समाधान स्वरूप बन गए, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल बन गए, इसलिए तुम्हारे लिए कोई समस्या मुश्किल नहीं है। हाथी के नीचे पांव के नीचे चींटी आ जाए तो क्या लगेगा उसको, कुछ लगेगा, उसी तरह तुम्हारे लिए भी ऐसे समस्याएं खेल की तरह मनोरंजन की तरह होगी। जैसे बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चे होते हैं तो उनको हिसाब किताब मुश्किल होता है, अगर खेल की तरह बताओ तो सहज लगता है, ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बाबा मिले हैं, उनके प्रति त्यागी हैं, तपस्वी हैं, निर्विघ्न वाली आत्माएं हैं, आगे बढ़ने वाली हैं, मंगोत्साह वाली आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ये सारी बातें थी। फिर दीदी के साथ मुलाकात, ये कैसे उन्होंने अपने वाइब्रेशन से शुरू से सेवा करना सिखा दिया सबको, और फिर 7 प्रश्न हैं, और फिर वरदान स्लोगन जो भी है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। रोग के बारे में कहा, सूक्ष्म रोग कांश भी क्या है वो भी हम उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सारी मूल्य बार बार दर्ज करनी, और कुछ बचा वरदान स्लोगन, वरदान रोग की बात है उसमें, देह अभिमान के भिन्न भिन्न बाबा ने कहा, जो विभिन्न रूप है रोग का अंश है वो कौन कौन से रोग के अंश है, वो ये ऐसा होना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सब रोग के अंश हैं बाबा ने कहा। तो ये भी हमको समाप्त करने हैं, क्योंकि ड्रामा फिक्स है, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। अगर हम ये सोचते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये भी बाबा के रोग का अंश है ये। और स्लोगन में प्रसन्नता संतुष्टता, ये किसकी निशानी है, हाँ ये उड़ती कला का आधार है, साधन है ये, प्रसन्नता और संतुष्टता हर जीवन में है तो उड़ती कला का ये साधन है, आधार है। अच्छा, ओम शांति।